आगे चलते हैं। दुआ नंबर 4, कर्ज की दुआओं में से एक और दुआ जिसमें और भी बहुत कुछ है। अल्लाहुम्मा रब्ब समावाते सबई व रब्बल अर्दी व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्ली शैइन फालिकल हब्बी वन नवा व मुंजिलत तौराती वल इंजील वल फुरकान أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضين الدين واغننا من الفقر। ए अल्लाह, सातों आसमानों के रब, महसूस करें हम तो एक आसमान का भी अहाता ना कर सकें, कहाँ इसके ऊपर फिर एक से एक और एक से एक। और अहादीस से पता चलता है कि हर आसमान मुख्तलिफ है। एक आसमान अगर सोने का तो एक चांदी का है, इसलिए आसमानों के ऊपर बड़ी खूबसूरत दुनिया है, कोई देख नहीं सकता आँखों से। दुनिया में मरने के बाद जब इंसान की रूह आसमानों पर ले जाई जाती है, तो पता नहीं वो क्या क्या देख रही होती है। जब हम जाने वाले को रो रहे होते हैं, वो वहाँ अगर मोमिन है तो जन्नतों की सैरें कराया जाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने वाला बना दे कि हमारे लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाएं। ऐसा ना करे कि ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समावाति वर, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रूह को वापस पलटा दिया जाए या हमारी दुआओं को वहीं से पलटा दिया जाए। और ज़मीन के रब, ज़मीनें भी साथ हैं। इस ज़मीन के नीचे 7 ज़मीनों की तहें न जाने कैसी हैं, क्या हैं, और फिर उसके अंदर जहन्नुम, अल्लाह की पनाह, सिज्जीन के घड़े जो एक कैद खाना है, वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। कुरान पढ़ें तो आपको ये सारी बातें ऐसे लगती हैं जैसे इस दुनिया की चीज़ें, इतना यकीन आने लगता है अल्लाह की बात पर। और अर्श अज़ीम के रब, अर्श अज़ीम क्या है, अल्लाह का अर्श, और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते क्या इनकी शान है। क्या दुनिया में किसी बादशाह का अर्श और क्या किसी की मिसाल, कहाँ उसकी कुर्सी की बात, कहाँ उसके अर्श की बात। बस इनको गैब के मामले समझ कर मान लीजिए कि वो उस बादशाह जो मालिकल मुल्क की है, उसका अपना तख्त कैसा होगा। हमारे और हर चीज़ के रब, सोचिए ज़रा, ए हमारे और हर चीज़ के रब, यानी कभी आपने सोचा दुनिया में जो बिलियंस इंसान हैं, इन सब का रब कौन है? वो एक ही रब है, वो रब जिसको आप मैं अपना रब कहते हैं। रब बना व रब कुल्ली शयीन। किसी से इम्प्रेस मत हो, लोगों के पास कुछ भी नहीं है आपको देने को, खाली हाथ हैं उनके। अगर कुछ है भी तो तौफीक अल्लाह ही देगा। आप सिर्फ अपनी नज़रें अल्लाह पे लगाइए, फिर देखिए आपके साथ होता क्या। यकीन तो कीजिए, आपको यकीन क्यों नहीं है अपने रब पे? क्या आपने अपने रब को कभी नहीं आजमाया? जब से पैदा हुए आज तक उसकी कुदरत के मोजज़े और निशानियाँ देखते हुए बड़े हुए हैं। कैसे दांत नहीं थे तो उसने दांत दे दिए, कैसे बाल कितनी दफ़ा कटे और फिर आ गए, कैसे दुनिया में आने के रास्ते हमवार किए, क्या आप और मैं अपने रब अज़ीम को नहीं पहचाने? ए हमारे और हर चीज़ के रब, और रब रब यु रब्बी तरबीयतुन, ज़र्रे को कमाल तक पहुँचाने वाला रब। अल्लाह ताला की एक एक सिफत पे गौर करके ईमान की ग़िज़ा मिलती है। ए दाने और गुठलियों को फाड़ने वाले, फालिकल हब्बी वन नवा, सुबह भी फाड़ता कुल औज़ु बि रब्बिल फलक, और हर वो चीज़ जिसको फाड़ता है। कभी आपने कच्चा बीज जिसमें से अभी पूरा पौधा नहीं निकला उसको निकला देखा है? कभी कभी ऐसे बच्चे छोटी छोटी कोंपले उठा लाते हैं, नीचे भी बीज होता है, उसके अंदर एक कट लगता है और कट के अंदर से एक छोटी सी डंडी और वो बाहर आती है। कौन करता है? किसान ने जब ये बीज इसी ज़मीन में डालना था, कितने हल चलाए, कितनी मेहनत की। आज के दौर में तो बड़े बड़े मशीन के आलात लेकर ज़मीन को फाड़ा, पहले दौर में गाय बैलों के पीछे लोहे के कुंडे लगाकर ज़मीन को प्लॉ करते थे, और वही ज़मीन में से एक बीज कैसे बाहर निकल आता है? ये है फालिकल हब्बी और नवा। कभी आम की गुठली देख ले, थोड़े दिन ज़मीन में डालें फिर निकाल के देखिएगा, आपको समझ आएगा कैसे वो भी अचार बनाते वक्त आम की गुठलियाँ तोड़ी हों तो आप देखें, सारे घर में ऐसे शोर मचा होता है कि गुठली इधर गिरी उधर गिरी, उछल उछल के जाती हैं इधर उधर। कौन है जो इस गुठली को फाड़ता है? सिर्फ अल्लाह ताला के एक नाम फालिक पे बात करें ना हम, तो हमारी अकलें घूम जाती हैं। अभी उसको पहचानना ही नहीं, अभी उसको मानना ही नहीं है। दुआ कीजिए कि सीरीज़ के बाद आपके लिए कुछ ऐसा काम आ जाए सामने कि जिसमें वाकई हम अपने रब को पहचान लें। असमाल हुस्ना, जितनी भी दफ़ा इस पे बात करें वही थोड़ी है। और उसके बाद फिर ए तौरातो इंजील और फुरकान यानी कुरान पाक को नाजिल करने वाले, व मुनजिलत तौरात वल इंजील वल फुरकान, दुनिया की तीन बड़ी बड़ी किताबें और अल्लाह ताला उसको उतारने वाला। हम एक किताब पढ़ जाएं तो बड़ी बात है, कहाँ उतारने वाला। और आप देखिए एक एक किताब के कंटेंट्स, उसका अंदाज, उसकी एक एक चीज़ अल्लाह की तरफ से है। हम कैसे अपने इल्म के दावे करें, हमें आता क्या है, अभी हमने समझा क्या है, अभी हमने पढ़ा क्या है, अभी हमने पढ़ाना क्या है। वो हस्ती जिसने तौरात इंजील और फुरकान को नाजिल किया, उसकी मदद की ज़रूरत है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आप मांगते क्या हैं, आऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्ली शयइन अंत आखिज़ुन बिनासियती, मैं तुझसे हर उस चीज़ के शर से पनाह मांगता हूँ जिसकी पेशानी तू पकड़े हुए है। मतलब यह कि वो तेरे कंट्रोल में है, और दूसरा मतलब यह कि जिसका नसीब तूने लिखा तेरे पूरे इख्तियार में है। पेशानी से पकड़ के किसी को सीधा कर दे और पेशानी पे चलाना शुरू कर दे, ये तेरे हाथ में। हर चीज़ की तकदीर अल्लाह ने बनाई, कद्दरहू तकदीरा, सूरज चांद तक की तकदीरें, इन्होंने कितने चक्कर लगाने हैं सब लिखा हुआ है। इसके ऑर्बिट में क्या है, ये किस स्पीड से जाता है, किस एंगल से घूमना है, सब उसकी तकदीर लिखी हुई है। आप पर मैं तो अपनी तकदीरों को ही मान जाएं तो बड़ी बात है, कहाँ पूरी कायनात उसके कुदरत में है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लक शै, ए अल्लाह तू ही अव्वल है, बस तुझसे पहले कोई चीज़ नहीं, और तू ही आखिर है। व अंतल आखिर फलैसा बादक शै, ज़रा सोचिए तो सही, तू ही अव्वल तू ही आखिर, ना तेरे से पहले कोई ना तेरे से बाद कोई है। कोई इतना एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग तो कहते हैं, एवर लास्टिंग भी है कोई, एक भी नहीं है। तो उसकी कुदरत को महसूस करो। और फिर इससे भी बढ़ के व अंत ज़ाहिर फ़लई सफ़ोक कशई व अंत अलबातिन फ़लई सदू न कशई, सुभानअल्लाह, बस तू ही बातिन है और तुझसे कुछ पोशीदा नहीं, इसी तरह बस तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं, तू ही गालिब है तू ही ज़ाहिर है, बस तेरे बाद कोई चीज़ नहीं। एक एक लफ्ज़ को अपने शऊर के साथ बोला करें, ज़ाहिर गालिब, नज़र भी आता है गालिब भी है, तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं, यानी है भी फिजिकली सबसे ऊपर तू, और गलबे के एतबार से भी तेरे से ऊपर कोई नहीं, तू ही बातिन और तुझसे कोई पोशीदा भी नहीं, यानी बाहर की भी चीज़ें तू जानता तो अंदर की भी जानता। कर क्या, इक़्दियन्नद्दैन, मेरा कर्ज़ दूर कर दे, बल्कि हमारा कर्ज़ दूर कर दे। कोई ऐसा कर्ज़, चाहे वो कर्ज़ हसन है, कोई दीन के नाम पे है, कोई दुनिया के है, दुआ कीजिए अल्लाह उसको दूर करा दे। अल्लाह हमारे लिए वो असबाब बना दे कि हम अपनी सारी जायज़ दीन और दुनिया की ज़रूरतों के कर्ज़ों से पाक हो जाए। और वाग़नीना मिनल फ़क्र, और फ़कीरी से भी बचा। सही मुस्लिम की रिवायत है ये 2713। देखा जाए तो इतना कुछ एक दुआ में तो हमें कभी मांगना भी नहीं याद रहता। तो आप इन सारी चीज़ों को जो आपको अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की महसूस हो रही हैं, इसको सामने रखते हुए मांगिए। और आप देख रहे हैं कि इसमें नामुमकिनात का तذकरा, मुमकिन बनना, दाने को फाड़ना मुमकिन नहीं लगता, गुठली को फाड़ना मुमकिन नहीं है, किताब हिदायत का नज़ूल किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि अल्लाह अपनी कुदरत से गैब से मदद कर सकता है। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दीन और दुनिया की सारी ज़रूरतें अपने रहमत के ख़जानों से पूरी कर दे। जी मांगिएगा।
اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء، أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأغننا من الفقر. اللهم رب السماوات السبع ورب العرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
آمین. آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا ایک دعا میں، مثلا جیسے ایک طویل دعا تھی، آپ اس میں سے اگر اندازہ لگا کر دیکھیں تو آدھی دعا میں صرف اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی خوبیاں، مثلا اگر اس پہ ہم غور کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا رب ہونے کی بات ہوئی، پھر عرش عظیم کا رب ہونے کی بات ہوئی، پھر اپنے اور ہر چیز جو کہ زندہ ہے، مخلوقات ہیں، ان کے رب ہونے کی بات ہوئی، پھر گٹھلیوں اور دانوں کو پھاڑنے والی صفت کی بات ہوئی، پھر تورات انجیل اور فرقان کے نزول کی بات ہوئی، بیچ میں دیکھیے اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ ہی میں پھر ایک خوبی اللہ کی، نوٹ کر کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یعنی پناہ تو مانگی شر سے، یہ تو ہو گئی ایک چیز جو مانگی، لیکن کس کی؟ انت آخذ بناصیتہ ہی، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. اگر آپ اتنی دعا تک دیکھیں تو لفظ صرف شر کو آپ ہائی لائٹ کر کے دیکھیں، ابھی صرف ایک چیز سے پناہ مانگی شر، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، پھر اللہم انت الاول، پھر صفت، فلیس قبلک شیء، پھر صفت، وانت الاخر، پھر صفت، فلیس بعدک شیء، پھر اس کی صفت، وانت الظاہر، پھر اللہ کی صفت، فلیس فوقک شیء، پھر اسی کی صفت، وانت الباطن، فلیس دونک شیء، پھر صفت، پھر اینڈ پہ اقضین الدین واغنینا من الفقر. تین چیزوں کی بات ہے، شر مخلوقات کا، اور قرض، اور فقر. کیا خوبصورت انداز ہے، اللہ ہمیں اسی طرح شعور سے سمجھ کر دعا مانگنے والا بنائے. اب ایک گو میں اس کو پڑھیے، اور یہ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے چیز، اس پہ غور کرتے ہوئے اس دعا کو دوبارہ ایک اچھے سوز کے ساتھ پڑھیے.
اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر
اس کو دعات کے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اقضی.
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر
اللہ تعالیٰ اس دعا میں مانگی گئی سب چیزوں کو ہمارے حق میں خیر کا بنائے، اور ہم ان چیزوں کے شر سے بچائیں جس کی پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رکھے اس کو. اب یہاں تک تو تھی قرض سے بچنے کی، قرض سے پناہ مانگنے کی دعائیں. ایسے لگتا ہے کہ دعائیں قبول ہوئیں، اور قرض ادا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب بنا دیے.